14 अप्रैल दिन भर दिन गुरुवार, मैं हूं रेहान फदल। भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर रोहित वेमला के परिवार ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया।
Because he said he the Mother India lost his child, but even after that there is no action taken on the person who died as a mother child.
देखेंगे बाबा साहब अंबेडकर की विरासत के लिए क्यों मची है राजनीतिक दलों में होड़।
सब लोग बाबा साहब को इसलिए हड़पना चाहते हैं ताकि उनकी राजनीतिक गोटी लाल हो सके, और अगर दलितों में उनकी घुसपैठ नहीं है तो उनकी घुसपैठ बन सके। इसके अलावा बाबा साहब में किसी पार्टी की, किसी भी स्थापित राजनीतिक दल की कोई भी दिलचस्पी।
होंगे आपके पत्रों के उत्तर और खेल समाचार भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, हरिता कांडपाल से। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दलित छात्र रोहित वेमुला की मां राधिका वेमुला और भाई राजा वेमुला ने आज मुंबई में एक कार्यक्रम में बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। रोहित वेमुला ने हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में आत्महत्या कर ली थी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद उनके भाई राजा वेमुला ने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर रोहित जिंदा होते तो उन्हें धर्म बदलने के उनके फैसले पर गर्व होता। रोहित वेमुला की आत्महत्या के बाद हैदराबाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को हटाने की मांग को लेकर छात्रों और प्रशासन के बीच गतिरोध बना हुआ है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पनामा पेपर लीक्स को उकसाने के लिए किया गया कारनामा बताया है। पनामा पेपर लीक्स में विदेशी कंपनियों के जरिए अपनी संपत्ति छिपाने वाले लोगों में व्लादिमीर पुतिन के करीबियों का नाम भी शामिल थे। उन्होंने पनामा पेपर लीक्स के लिए अमरीका को जिम्मेदार ठहराया है।
Кто этим занимается, вот этими провокациями? Ну вот мы знаем, что там есть сотрудники американских официальных учреждений.
व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि ये उकसाने के लिए किया जा रहा है, इसमें अमरीकी आधिकारिक संस्थाओं के कर्मचारी शामिल थे। मेरे प्रेस सेक्रेटरी ने बताया कि जर्मन अखबार शेरुट जेटुंग जिसने पहले ये रिपोर्ट छापी वो अमरीकी वित्तीय संस्थान गोल्डमैन सैक्स का अखबार है। मुझे इनसे पछतावे की भी उम्मीद नहीं है। ड्यूमा के लिए चुनाव नज़दीक आएंगे तो गलत रिपोर्टों का सिलसिला और बढ़ जाएगा। हमारे देश को ये लोग छल नहीं सकते हैं। ये थे व्लादिमीर पुतिन के शब्द। पिछले दिनों पनामा की कंपनी मोसाक फोंसेका के करीब 1 करोड़ दस्तावेज सामने आए थे जिनमें कई बड़े नेताओं की करीबियों के नाम आए थे जिन्होंने संपत्ति छिपाने के लिए विदेशी कंपनियों का सहारा लिया था। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। भारत प्रशासित कश्मीर में सुरक्षा बलों के साथ हिंसक संघर्ष में 4 आम लोगों की मौत के बाद तनाव को देखते हुए आज पूरे राज्य में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक अफवाह फैलाने से रोकने और शांति बनाए रखने के लिए ये कदम उठाया गया है। श्रीनगर में कई इलाकों में आज भी कर्फ्यू लगा हुआ है। हंदवाड़ा के भी कई इलाकों में कर्फ्यू जारी है। सेना पर एक कश्मीरी लड़की के कथित यौन शोषण के आरोप के बाद हंदवाड़ा और अन्य इलाकों में तनाव बना हुआ था। हालांकि सेना ने यौन शोषण के आरोप से इनकार किया है। रूस ने कहा है कि बाल्टिक सागर में सोमवार को अमरीकी जंगी जहाज पर उड़े रूसी विमानों ने सभी जरूरी सुरक्षा मानकों का ध्यान रखा था। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि अमरीकी जहाज डोनाल्ड कुक को देखकर सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए रूसी SU-24 फाइटर जेट मुड़ गए थे। रूसी मंत्रालय ने कहा है कि अमरीकी जहाज रूस से 9 सैनिक अड्डे के पास था। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। दलित छात्र रोहित वेमुला की मां और भाई ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के मौके पर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया है। हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के शोध छात्र रोहित वेमुला ने जनवरी में आत्महत्या कर ली थी जिसे लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए थे। रोहित की मां राधिका और भाई नागा चैतन्य वेमुला जिसे राजा वेमुला के नाम से जाना जाता है ने डॉक्टर B.R. अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर की मौजूदगी में दादर में एक समारोह में दीक्षा ली। अन्य राजनीतिक दलों ने इस मामले को तवज्जो नहीं दी लेकिन एक हिंदू दलित परिवार का बौद्ध हो जाना भी एक खबर है। मुंबई से हमारे संवाददाता सुशांत मोहन।
अपने एक बयान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि वो बतौर हिंदू पैदा तो हुए हैं लेकिन वो बतौर हिंदू मरेंगे ये कोई और तय नहीं कर सकता। हैदराबाद विश्वविद्यालय में फांसी लगाकर आत्महत्या करने वाले छात्र रोहित वेमुला की मां और उनके भाई ने आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर मुंबई में हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म को अपना लिया। हिंदू धर्म को छोड़ने के कारण पर बात करते हुए रोहित के भाई राजा ने बीबीसी को बताया कि जिस समाज ने उनके साथ भेदभाव किया और उनके भाई की विवादित मौत पर भी कोई कार्रवाई नहीं की, ऐसे समाज का हिस्सा वो नहीं बनना चाहते थे।
मेरे भाई के मरने पर कहा गया कि भारत माँ का बेटा मरा है, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। हम अभी भी दलित हैं, वो समस्याएं भी वही हैं।
राजा ने बतौर दलित अपने साथ हुए बुरे बर्ताव को याद करते हुए कहा,
मैं किसी ब्राह्मण को दोष नहीं दे रहा, लेकिन ब्राह्मण मानसिकता को दोष देना चाहता हूँ। मैं और रोहित एक ब्राह्मण शिक्षक के पास पढ़ने जाते थे, लेकिन वो हमारे कॉपी किताब को हाथ नहीं लगाते। यहाँ तक कि कमरे में छात्रों के लिए रखे पानी के गिलास को अगर हम हाथ भी लगा देते तो सभी के सामने दोबारा मंजवाते थे। ऐसे धर्म का हम क्या करें।
वेमुला परिवार के इस धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया को पहले सार्वजनिक तौर पर मुंबई के अंबेडकर सभागृह में किया जाना था और बाबा साहब अंबेडकर के पौत्र प्रकाश अंबेडकर इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे थे, लेकिन सुरक्षा कारणों और रोहित की मां की खराब तबीयत के चलते इस सार्वजनिक समारोह को निजी बना दिया गया। प्रकाश अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया के पूरे होने के बाद इस मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की और बीबीसी को बताया कि वेमुला परिवार का धर्म परिवर्तन का यह फैसला वर्तमान सरकार और व्यवस्था का विरोध भी है।
ये रोहित के मामले में जिस तरह से सरकार ने बर्ताव किया है, उसी तरह का बर्ताव एफटीआई के स्टूडेंट से किया है, दूसरे संगठनों से किया है। ये किसी से वार्तालाप करने में विश्वास नहीं रखते हैं। दे डोंट बिलीव इन डायलॉग, दे बिलीव इन इम्पोजिशन ओनली। इसलिए वो कह रहे कि हमने फैसला कर लिया, आपको जो करना है वो करना।
हालांकि वेमुला परिवार के धर्म परिवर्तन के इस मुद्दे को निजी मामला मानते हुए अन्य राजनीतिक दलों ने इस पर टिप्पणी करने से गुरेज ही किया। फिलहाल वेमुला परिवार अब बौद्ध हो गया है, बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती भी बन गई है, प्रकाश अम्बेडकर कुछ दिन सुर्खियों में भी आएंगे, लेकिन रोहित वेमुला के साथ शुरू हुआ दलित विमर्श का सवाल अभी भी अधर्म है और शायद रहेगा। आयुष देशपांडे के साथ सुशांत मोहन, बीबीसी मुंबई।
बाबा साहब अंबेडकर की 125वीं जयंती यूं तो देश भर में मनाई गई, कई कार्यक्रम हुए, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसकी चर्चा खास तौर पर है। सभी राजनीतिक दलों ने इस मौके को कुछ इस तरह मनाया जैसे कि उनके सबसे बड़े अनुयायी वही हों। बहुजन समाज पार्टी ने जहां एक बड़ा कार्यक्रम करके अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की, वहीं अन्य राजनीतिक दलों ने भी अपनी तरह से बाबा साहब को याद किया। लेकिन इस सब के बीच चर्चा जिस बात की थी वो ये कि सभी राजनीतिक दलों की दिलचस्पी खुद को बाबा साहब का अनुयायी बनाने में कम, दूसरों को उनका विरोधी बनाने में ज्यादा है। एक रिपोर्ट के साथ लखनऊ से समीर आत्मज मिश्र।
यूं तो बाबा साहब की वैचारिक विरासत पर अधिकार जताने की परंपरा राजनीति में कोई नई नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये कवायद कुछ ज्यादा तेज दिख रही है। मौका भी उनकी 125वीं जयंती का था, तो कोई भी राजनीतिक दल इसे बिना भुनाए कैसे रह सकता है। जहां तक बहुजन समाज पार्टी की बात है तो उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति और बाबा साहब पर वो अपना एकमात्र अधिकार समझती है। ऐसे में जब दूसरे दल भी जोर शोर से उन्हें अपना बताने लगे तो पार्टी नेता बहन जी की ब्रुकटी तन गई।
कांग्रेस पार्टी व बीजेपी एंड कंपनी के लोग तो इनकी जयंती मनाने को लेकर जो हर वर्ष किस्म किस्म की नाटकबाजी करते हैं, ये सब केवल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अपने दलित समाज का व उनके अनुयायियों का, अन्य और अनुयायियों का वोट लेने के लिए ही अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ में ये लोग कर रहे हैं।
बहुजन समाज पार्टी ने लखनऊ में रैली नुमा एक बड़ा कार्यक्रम किया और इस मौके को उसने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी ताकत दिखाने के लिए भी इस्तेमाल किया। कांग्रेस पार्टी ने भी अपने दफ्तर में कार्यक्रम आयोजित किया और आने वाले कुछ दिनों में बाबा साहब को याद करते हुए कुछ और कार्यक्रम बनाए हैं। लेकिन बसपा नेता मायावती को जवाब दिया भारतीय जनता पार्टी ने। पार्टी प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक कहते हैं कि बाबा साहब पर राजनीति सिर्फ बसपा कर रही है।
मायावती जी इस पूरे कार्यक्रम को चुनावी भाषण के रूप में कर रही थी, वोट मांग रही, तो अंबेडकर जयंती मना रही है, और वोट मांग रही है तो सियासत कौन कर रहा है, आपने भी देखा देश भर में भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यक्रम हुए, आपको कोई नेता कहीं दिखा जो आज के दिन वोट मांग रहा हो? तो कितनी हड़बड़ाहट में है और इस महापुरुष के नाम पर कैसे वोट बटोरना चाहती है ये परिलक्षित हुआ। और उन्होंने कहा कि बाबू जगजीवन राम की जयंती सासाराम में क्यों नहीं मनाई गई, तो फिर तो सवाल ये उन पर भी आता है ना कि आज अम्बेडकर जयंती महू में उन्होंने क्यों नहीं मनाया।
वहीं सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी का कहना है कि बाबा साहब के विचारों पर सिर्फ वही चलती है, बाकी पार्टियां सिर्फ दिखावा करती हैं। पार्टी प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी कहते हैं कि लोहिया और अम्बेडकर के विचार एक जैसे हैं और इन विचारों को अमल में लाने का काम उनकी पार्टी ने किया है।
समाजवादी पार्टी चूंकि एक वैचारिक धारा से आई है डॉक्टर लोहिया के रास्ते से, तो डॉक्टर लोहिया अम्बेडकर का ही रिश्ता रहा है, वो सामाजिक न्याय का रास्ता है, वही रास्ता डॉक्टर अम्बेडकर का था, वही रास्ता डॉक्टर लोहिया का था। इसलिए हमारे लिए डॉक्टर अम्बेडकर वोट या राजनीति करने का माध्यम नहीं हो सकता, हमारे लिए सामाजिक क्रांति का माध्यम है।
लखनऊ में आज सभी राजनीतिक दलों के झंडे और बैनर बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान में जगह जगह दिखे, उनके विचारों पर चलने के लिए संकल्प लिए गए। लेकिन जानकारों का कहना है कि पार्टियां भले ही इसे राजनीति से परे बता रही हों, लेकिन देखने में ऐसा नहीं लगता। बहरहाल पार्टियां तो दावा कर रही हैं, लेकिन देखना यह होगा कि आम लोग किस पार्टी को बाबा साहब का वास्तविक अनुयायी बताते हैं। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
जैसा कि आपने सुना, बाबा साहब अम्बेडकर की 125वीं जयंती पर राजनीतिक दल बढ़ चढ़कर उन्हें याद कर रहे हैं और उनके प्रति आदर दिखा रहे हैं, लेकिन अम्बेडकर की दलीलों, विचारों और उनकी बातों पर अमल का क्या? BBC संवाददाता विनीत खरे ने इसी मुद्दे पर बात की CSDS के अभय कुमार दुबे और दलितों के मुद्दों को उठाने वाली मासिक पत्रिका फॉरवर्ड प्रेस के संपादक प्रमोद रंजन से। सबसे पहले अभय दुबे ने कहा,
सच्चे अम्बेडकरवादियों को चाहिए कि इन सारी पार्टियों से एक सवाल पूछें कि दरअसल बाबा साहब के विचारों के बारे में आपका क्या ख्याल है। सब लोग बाबा साहब को इसलिए हड़पना चाहते हैं ताकि उनकी राजनीतिक गोटी लाल हो सके और अगर दलितों में उनकी घुसपैठ नहीं है तो उनकी घुसपैठ बन सके। इसके अलावा बाबा साहब में किसी पार्टी की, किसी भी स्थापित राजनीतिक दल की कोई भी दिलचस्पी नहीं है।
प्रमोद, थोड़ा ये स्केप्टिक लुक है या आपको लगता है कि रियलिटी है?
एक नई चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा जो मैंने गौर की अभी 11 तारीख को, सिर्फ अपने डॉक्टर अम्बेडकर ही नहीं, फूले की तस्वीर मैंने पहली बार देखी जो अखबारों में छपी। फूले और अम्बेडकर दोनों को अपने साथ लाना चाहते हैं, यानी उनके साथ एक बड़ा तबका उनके निशाने पर है, OBC और दलित।
अम्बेडकर का एजेंडा तो कास्ट के एनिहिलेशन का था कि जाति का सफाया किया जाए। कांशीराम का एजेंडा रहा है कि जाति को मजबूत किया जाए, क्योंकि जाति मजबूत होगी तभी जातियों की जो प्रतियोगिता चुनाव के दायरे में होती है उसका उन्हें लाभ होगा। इसको कांशीराम ने छुपाया नहीं है। कांशीराम और अम्बेडकर के बीच का ये जो विरोधाभास है इसको दबा दिया जाता है। तो जब दलित राजनीति करने वाले लोग ही अंबेडकर के विचारों का उल्लंघन कर रहे हैं तो आप दूसरी पार्टियों से क्या उम्मीद कर सकते हैं?
प्रमोद, छात्र रोहित वेमुला की माँ का और उनके भाई का बौद्ध धर्म अपनाना, क्या लोगों की जिंदगी में बदलाव आता है अगर आप धर्म परिवर्तन करते हैं?
हाँ, निश्चित रूप से एक बड़ा बदलाव आता है। अगर आप किसी भी धर्म में जाते हैं, बौद्ध धर्म हो या कोई किसी भी धर्म में आप जाते हैं, तो आपके भीतर कुछ बदलता है। वो सिर्फ सामाजिक चीज़ नहीं है, आपके भीतर की आंतरिक चीज़ भी है।
अभी जी, दलित मुस्लिम, दलित क्रिश्चियन, उनकी शिकायतें तो अलग हैं।
देखिए, धर्मांतरण कर चुके दलितों के जो अध्ययन हमारे सामने आए हैं, वो अध्ययन जो तस्वीर पेश करते हैं वो तस्वीर बहुत खुशनुमा नहीं है। अब प्रमोद जी कह रहे हैं कि उनके अंदर कुछ बदल जाता है, जरूर अंबेडकर का भी कहना यही था कि हम धर्मांतरण करते हैं तो एक लंबी छलांग भरते हैं, लेकिन व्यवहारिक सामाजिक धरातल पर जो लोग ईसाई बने हैं, जो लोग मुसलमान बने हैं, वहाँ उनके साथ कोई बहुत बराबरी का व्यवहार नहीं होता। इसीलिए मुझे लगता है कि जब दलित बौद्ध बनता है वो धर्मांतरित हो चुके दलितों के बीच में ही रहता है।
तो फिर धर्म आखिर परिवर्तन क्यों किया जाए अगर जो कारण है वो जिंदा है? फिर
वहाँ वो मूल कारण नहीं रहते हैं। अगर आप हिंदू धर्म के भीतर हैं तो एक तो आपने वहाँ से क्रांति की और दूसरे धर्म में गए, तो वहाँ आपका विरोध जारी रहता है और वहाँ धर्म ये नहीं कहता है कि आप समान नहीं हैं, तो समानता का उनका दावा बरकरार रहता है।
तो दावे के आधार पर आप दावे को के बारे में सोच कर आप फिर धर्म परिवर्तन करते हैं?
नहीं, वो चाहते हैं, उनके साथ बैठने का उनको हक होता है। जैसे मुसलमानों के बीच अभी पसमानदा आंदोलन चल रहा है, ये सारे जितने मुसलमान हैं, खास के पिछड़े और दलित जातियों के मुसलमान, वो सब कन्वर्टेड मुसलमान हैं लगभग। ये अब अपना दावा पेश कर रहे हैं और उनमें बराबरी आ भी रही है।
ये अगर अगर धर्म परिवर्तन होता भी है तो हिंदू जो समाज है वहाँ क्या आपको लगता है कि जाति व्यवस्था को लेकर जो सोच है उसमें परिवर्तन आएगा या फिर जातियों को लेकर की वो कमी आएगी जो एक डिविजन है जातियों की को लेकर?
देखिए, एक जमाने में तो हिंदुओं को इस बात की कोई परवाह नहीं होती थी, आम हिंदुओं को, मैं राजनीतिकृत हिंदुओं को नहीं बात कर रहा हूँ, कोई परवाह नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे करके उनमें इस बात के प्रति पशुपेश पैदा हो गया है।
क्या करें अब?
हाँ, कि वो क्या करें जो लोग धर्मांतरण कर रहे हैं। अब एक जमाने में तो ऊंची जातियां भी धर्मांतरण करती थी, आज ऊंची जातियों में कोई धर्मांतरण नहीं करता। दलितों में अभी एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो कि धर्मांतरण के बारे में सोचता है और धर्मांतरण की राजनीति करता है।
लेकिन मैं समझना चाह रहा हूँ कि क्या हिंदुओं के बीच भी कोई एक बहस जनरेट होती है कि क्या कारण है?
समाज में ये बहस तो तब पैदा होगी जबकि बहस पैदा की जाए। दरअसल समाज में राजनीतिक बहसों को इंजेक्ट करना पड़ता है।
मुझे लगता है कि धर्मांतरण को लेकर एक बहस होनी चाहिए और सीधी बहस होनी चाहिए कि धर्मांतरण किसी व्यक्ति का अधिकार। तो जो लोग हिंदू धर्म के पक्षधर हैं, या हिंदू धर्म कहना भी शायद गलत होगा, जो लोग ब्राह्मणवाद के पोषक हैं, मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि हिंदू धर्म के भीतर उतनी असमानता नहीं है। जो लोग त्रस्त हैं, आप थोड़ा ध्यान से देखो किस चीज़ से त्रस्त हैं, वो त्रस्त हैं ब्राह्मणवाद से, एक खास कम्युनिटी के वर्चस्व से त्रस्त हैं या कुछ खास कम्युनिटियों के वर्चस्व से त्रस्त हैं। तो उनको सोचना चाहिए, अगर वो सोचते हैं कि
सोच आपको होती दिख रही है, वो एक बहस,
वो कहीं नहीं दिखती।
यहाँ पे एक छोटा सा मैं संशोधन पेश करूंगा। आज स्थिति ब्राह्मणवाद और मनुवाद तक जा चुकी है। आज स्थिति यह है कि जब पिछड़े वर्गों को, उनको जब सत्ता प्राप्त होती है तो वो दलितों के ऊपर कम अत्याचार नहीं करते। यहाँ तक कि जो मुस्लिम जातियाँ, जहाँ मुसलमानों के पास सत्ता है, वहाँ भी कोई दलितों के साथ वो रहम करते हो, ऐसी बात नहीं है। तो दलितों की स्थिति विशेष रूप से खराब है।
दरअसल भाई जो कह रहे हैं, मुझे लगता है तथ्यात्मक रूप से गलत है। एक सामान्य परसेप्शन बन गया है कि मुसलमान या ओबीसी जो है दलितों का दमन करते हैं, जबकि आपसी कॉन्फ्लिक्ट है, जहाँ भी दो भाई होते हैं झगड़ा होता है। जैसे आप उत्तर प्रदेश का उदाहरण लें, तो जब मायावती सत्ता में थी तो लगातार ये आरोप लगा कि उन्होंने जो मुलायम सिंह के समर्थक थे, जो ओबीसी हम कह सकते हैं, उनका दमन किया उन्होंने। जब मुलायम सिंह आए तो उन्होंने उनका दमन किया। बिहार में आप देखेंगे कि मांझी के समर्थकों को नीतीश और लालू ने परेशान किया, और लालू और नीतीश का कहना है कि उन्होंने हमको धोखा दिया। तो ये आपसी झगड़ा चलता रहता है।
प्रमोद, आखिरी सवाल आपसे, दलित लीडरशिप, नए दलित नेता कहाँ हैं? मतलब क्या वो उभर रहे हैं?
एक दूसरी कतार लगातार पैदा होते हुए दिख रही है यूनिवर्सिटियों में। आप अगर गौर करेंगे तो तमाम जो आंदोलन पिछले दिनों में उभरे हैं, कुछ महीनों में, वो सभी यूनिवर्सिटियों में दिख रहे हैं। आप
क्या ये आपको वामपंथी विचारधारा से थोड़ा नजदीक होकर देखते हैं कि एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी लेकर आपको लग रहा है कि आगे बढ़ रहे हैं?
जो दलित विमर्श के पैरोकार हैं उनमें हमेशा ही मार्क्सवाद के प्रति, वामपंथी विचारधारा के प्रति गहरा आकर्षण रहा है। दलित पैंथर के जमाने से आप देखिए, वो हमेशा उसको बहुत ही इस तरह से देखते रहे हैं कि इससे हमें कुछ विचारों के स्तर पर मिल सकता है। विचारों के स्तर पर तो ये आदान प्रदान चलता रहता है। व्यवहारिक राजनीति के स्तर पर पहली बार जो कैंपस पॉलिटिक्स है उसमें जय भीम और लाल सलाम का एक संयोग होते हुए दिखता है। और छात्र एक संक्रमणकालीन अवस्था, एक ट्रांजिशनल सिचुएशन है। जो आज छात्र हैं वो कल छात्र नहीं रहेंगे, और उसका एक बहुत ही छोटा सा प्रतिशत है आगे जाकर नेतृत्व में जाता है। कहीं भी आप देखिए, व्यवहारिक स्थिति यही है। और फिर वो उन राजनीतिक दलों में चला जाएगा जो स्थापित राजनीतिक दल हैं, जो सामाजिक प्रश्न पर पुनर्विचार करने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यही छात्रों का नेतृत्व जो है, जो आज जय भीम और लाल सलाम का संयोग देख रहा है, संयोग कर रहा है, का जुड़ाव कर रहा है, वो उनका एक बहुत छोटा सा हिस्सा। जब वरिष्ठ होकर बड़ी पार्टियों में जाएगा तब उसका क्या रुख होगा, इसके बारे में आज आप कुछ नहीं कह सकते।
परिचर्चा में भाग ले रहे थे अभय कुमार दुबे, प्रमोद रंजन और विनीत खरे।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। अमरीकी विदेश मंत्री एश कार्टर ने कहा है कि अमरीकी रक्षा मंत्री एश कार्टर ने कहा है कि दक्षिण चीन सागर में अमरीका ने फिलीपींस के साथ साझा निगरानी शुरू कर दी है। अमरीका ने विवादित दक्षिण चीन सागर में ये पहरेदारी ऐसे समय में की है जब चीन इस क्षेत्र के अधिकार को लेकर अपनी दावेदारी पहले से ज़्यादा मजबूती से कर रहा है। बीबीसी संवाददाताओं के ब्यौरे के साथ अमर शर्मा।
अमेरिका इस विवादित क्षेत्र दक्षिण चीन सागर में अपने सहयोगियों के साथ साझा निगरानी कभी कभार ही करता है। अमेरिका ने अभी फिलीपींस के साथ साझा निगरानी शुरू की है। पूरे दक्षिण चीन सागर पर चीन अपना अधिकार जताता है, जबकि ब्रुनेई, ताइवान, फिलीपींस, वियतनाम और मलेशिया के वहां अपने दावे हैं। मनीला में फिलीपींस के राष्ट्रपति बेनिग्नो एक्विनो से मुलाकात के बाद अमरीकी रक्षा मंत्री एश कार्टर संवाददाताओं से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चीन की सैन्य गतिविधियों ने क्षेत्रीय चिंताओं को बढ़ा दिया है। कार्टर ने कहा कि अमेरिका इस क्षेत्र के देशों की चिंताओं को संबोधित कर रहा है।
Countries across the Asia Pacific are voicing concern with China's land reclamation, which stands out.
दक्षिण चीन सागर में जमीन को लेकर चीन दावेदारी करता रहा है, अब उसकी सैन्य गतिविधियों पर एशिया प्रशांत देश चिंतित हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर सार्वजनिक रूप से और क्षेत्रीय बैठकों में भी अपनी चिंताएं जताई हैं। इनमें बहुत से देश अमेरिका के बहुत पुराने साथी हैं, कुछ नए भी हैं। ये कह रहे हैं कि अमेरिका उन नियमों और सिद्धांतों की रक्षा करे जिनकी बदौलत ये क्षेत्र दशकों से फल फूल रहा है।
एश कार्टर के शब्द। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा है कि अमेरिका फिलीपींस में सैन्य सहयोग पहले से ज्यादा बढ़ाएगा। अमेरिकी सैन्य टुकड़ियां फिलीपींस में आती जाती रहेंगी। हाल के वर्षों में दक्षिण चीन सागर में चीन की लगातार बढ़ती सैन्य उपस्थिति से क्षेत्र में तनाव बढ़ा है। फिलीपींस के रक्षा मंत्री वोल्टेर गाजमिन के साथ अमेरिकी रक्षा मंत्री एश कार्टर साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे।
Last month, we commenced joint maritime patrols in the South China Sea. These patrols and alliance decisions.
दक्षिण चीन सागर में पिछले महीने नौसेना की साझा निगरानी शुरू की है। जनवरी में वॉशिंगटन में विदेश मामलों के हमारे सचिवों के साथ मेरे और वोल्टेयर के बीच गठबंधन बनाने को लेकर फैसला हुआ था। इन साझा गश्तों से हमारी गतिविधियां मजबूत होंगी और फिलीपींस की नौसेना में भी सुधार आएगा। साथ ही इस साझा निगरानी से इस सागर क्षेत्र की सुरक्षा बढ़ेगी।
एश कार्टर के शब्द। अमेरिकी सेना और लड़ाकू विमान अभी फिलीपींस की सेना के साथ साझा युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। अमेरिका का साझा निगरानी का ऐलान फिलीपींस के मदद मांगने के कुछ दिनों बाद आया है। फिलीपींस के एक राजनयिक ने अमेरिका से मदद मांगी थी कि वो दक्षिण चीन सागर के शोएल में चीन को रोके, क्योंकि ये क्षेत्र फिलीपींस के मछुआरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चीन ने पिछले कुछ समय से द्वीपों के निर्माण और उनमें हवाई पट्टी बनाने का काम शुरू किया है। इसके बाद हाल के महीनों में अमेरिका ने दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में अपने सहयोगियों को समर्थन बढ़ा दिया है। अमेरिका का कहना है कि चीन ने स्पार्टली द्वीप समूह में 810 हेक्टेयर जमीन रिक्लेम की है। रिक्लेम का मतलब सागर में कृत्रिम रूप से जमीन तैयार करना है। अमेरिका ने चीन पर सैन्य गतिविधियां बढ़ाने का आरोप लगाते हुए इन पर लगाम लगाने को कहा, लेकिन चीन ने इन निर्माणों को नागरिक उद्देश्य बताते हुए इन्हें जारी रखने की बात कही।
अमेरिका और फिलीपींस में सैन्य सहयोग बढ़ा।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम।
बीबीसी हिंदी।
आज गुरुवार है और आज के दिन आप इंतजार करते हैं अपने पत्रों का। आपके पत्रों के साथ हैं राजेश जोशी और वंदना।
आपकी राय। नमस्कार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का
और मेरा वंदना का।
वंदना भी मेरे सामने है और वंदना के सामने रखी हैं कुछ चिट्ठियाँ। ये प्रिंट की हुई एक चिट्ठी है और पोस्टकार्ड आपके हाथ में है, तो आप कहाँ से शुरू करना चाहेंगी?
पहले मुझे पोस्टकार्ड से एक बहुत अच्छे लगते हैं,
मतलब आप जैसे जैसे पढ़ रही हैं और जैसे उसको महसूस करके।
जी जी बिल्कुल, आपने सही बयान किया। एक उसमें एक अलग सा एक एहसास होता है।
ईमेल के जमाने में और व्हाट्सएप के जमाने में पीले रंग के पोस्टकार्ड देख के वाकई दिल खुश हो जाता है।
तो ये जो पोस्टकार्ड है, ये कह रहे हैं कि इन्होंने पहली दफा लिखा है। उत्तम मांदले हैं, ग्राम पाथुड़ है, शायद ठीक से समझ में नहीं आ रहा, महाराष्ट्र में। और ये कह रहे हैं कि अजय शर्मा ने मराठवाड़ा के उस्मानाबाद ज़िले से दलित समाज पर रिपोर्ट सुनवाई थी और ये इनको काफ़ी अच्छी लगी। काफ़ी पुरानी रिपोर्ट है।
जी हाँ, वो अकाल यात्रा जब कर रहे थे तो तब ये रिपोर्ट शायद उन्होंने की होगी। मार्च के महीने की ये चिट्ठी भी थोड़ा सा पुरानी ही है
जी।
हमारे पास अब पहुंची है। तो उत्तम मांदले साहब, आपने पहली बार चिट्ठी लिखी, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम सुनते रहिए और अपनी प्रतिक्रिया हम तक भेजते रहिए।
और ये लिख भी रहे हैं कि इंडिया बोल में इनका फोन नहीं लगता, तो निराश ना हो, आज चिट्ठी शामिल हो गई है तो फोन भी लग जाएगा।
फोन में आप भी शामिल होंगे
जी। तो अगला जो पोस्ट कार्ड है वो है अगम प्रकाश टिमरनी, हरदा मध्य प्रदेश से। ये लिखते हैं कि सुबह का दूसरा कार्यक्रम 8 बजे से बदलकर 8:30 बजे कर दे, क्योंकि उस दौरान ये ऑल इंडिया रेडियो सुनते हैं।
8 से 8:30 का कार्यक्रम जो है वो दोस्त बहुत पुराना कार्यक्रम है। ये समय बदलना तो हमारे लिए अभी संभव नहीं होगा, तो रेडियो की जगह अगर आप इंटरनेट से सुन सकें, अपने मोबाइल फ़ोन पे बाद में सुन सकें, उस तरह का कुछ आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा।
जी, इंटरनेट पर उपलब्ध है bbchindi.com पर, तो दिन में कभी भी सुन सकते हैं
जी।
और अगला जो पत्र है वो है राम सिंह गोसाई, एवर फाइल 12 पत्थर, नैनीताल का।
नैनीताल से लिखते हैं, क्या लिखते हैं?
ये कहते हैं इन्होंने दरअसल जो जुबैर अहमद की जो सीरीज थी और कश्मीरी पंडितों पर जो चर्चा हुई थी, वो इनको अच्छी लगी, उसके बारे में इन्होंने तारीफ की है। और एक इन्होंने लिखा है कि मेरा सुझाव है कि क्या बीबीसी अपना हिंदी समाचार चैनल नहीं खोल सकता? यदि खुल जाता है तो भारत के 24 घंटों के चैनल पर तो ताला
लग जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सुनते हैं बीबीसी को। और मैं देख रहा हूँ कि इन्होंने ये भी लिखा है कि बीबीसी रेडियो चलता है या नहीं, आप इंटरनेट के जरिए सुनते हैं। तो भाई साहब, बीबीसी रेडियो बाकायदा चारों प्रोग्राम आप रेडियो पर सुन सकते हैं, मोबाइल पर सुन सकते हैं और इंटरनेट के जरिए सुन सकते हैं। रही बात 24 घंटे का चैनल शुरू करने की, तो ये एक ऐसी मतलब उपलब्धि होगी हमारे लिए जिसको हासिल करने में हमें बहुत खुशी होगी, लेकिन वो मकाम अभी बहुत दूर है शायद। तो फिलहाल जो चार कार्यक्रम हैं वही हम आप तक पहुंचाते हैं और पूरी ईमानदारी से पहुंचाते हैं,
और ऐसे ही हमें चिट्ठी
लिखते रहिए। जी बहुत शुक्रिया जी।
और अगला एक ईमेल शामिल करना चाहती हूं, और इन्होंने बड़े हक से लिखा है, पहले की तरह पीयूष गुप्ता लिख रहा हूं।
पहले की तरह जी पीयूष गुप्ता जी, मुझे याद है आपने पहले भी चिट्ठी लिखी थी।
ये कह रहे हैं कि मुझे एक गुजारिश करनी है कि भारत की शिक्षा नीति में एक रूपता नहीं है, उस एक रूपता को लाने के लिए आपको एक ऐसा कार्यक्रम चलाना चाहिए जिसमें हर महीने एक रिपोर्ट हो, सुधारों के बारे में बात की जाए। कि
ये कह रहे हैं कि शिक्षा पर हमको एक कार्यक्रम करना चाहिए। जी बहुत अच्छा सुझाव है आपका। प्राइमरी शिक्षा जो प्राथमिक शिक्षा है उस पर हम लोग आंतरिक जो बातचीत होती है उसमें भी ये मुद्दा कई बार आया है, हम कोशिश करेंगे कि इस पर कुछ हम कार्यक्रम प्रसारित करें।
जी और एक शिकायती पत्र मुझे लगता है जरूर शामिल होना ही चाहिए।
शिकायती पत्र तो होना ही चाहिए जी।
बड़े ही रंगदार रंगीले अंदाज में लिखा है।
लिखने वाले कौन?
लिखने वाले साहब हैं श्रीकांत चौधरी, एक्स सिविल जज।
अच्छा, ये रिटायर्ड सिविल जज हैं।
जी बिल्कुल, दमोह से लिखा है इन्होंने,
दमोह मध्य प्रदेश।
जी लिखते हैं कि जी हाँ, सबसे पहले सुनिए प्रमुख समाचार, बीबीसी के लिए तो सबसे महत्वपूर्ण समाचार क्रिकेट ही है।
ओ मैं समझ गया, इनको शिकायत है कि बीबीसी में क्यों क्रिकेट इतना ज़्यादा होता है। और इन्होंने जाहिर सी बात है अपने लिखा हुआ है कि शिकायत की दुनिया में इतना सब कुछ हो रहा है, बीबीसी सिर्फ क्रिकेट करता
क्रिकेट
है
करता
और ये राष्ट्रपति के नाम भी मैं देख रहा हूँ आपके हाथ में एक अपील भी की है।
या इन्होंने लिखा है कि भारत रत्न या पद्मश्री देने की कृपा करें, राष्ट्रपति के उन्होंने लिखा है बीबीसी
राष्ट्रपति के नाम अपील की है।
जी जी, नोबेल प्राइज के लिए भी प्रस्ताव किया जा सकता है। अब ये व्यंग्य में लिख रहे हैं, ये तारीफ कर रहे हैं,
ये व्यंग्य में ही लिख रहे हैं भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप दमोह से श्रीकांत चौधरी साहब MA LLB है और एक्स सिविल जज हैं। आपने व्यंग्यात्मक तरीके से जितने बेहतरीन बात कही है और जो संवाद हम तक पहुँचाना था बहुत आराम से पहुँचा दिया है। लेकिन क्रिकेट तो ऐसी मजबूरी है सबकी कि जब क्रिकेट होता है तो हमको जाहिर सी बात है उस पर रिपोर्ट करनी होती है।
एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि ये विश्व कप का समय था तो जाहिर है थोड़ी सी उसकी कवरेज
ज्यादा ओवरडोज हो गई होगी। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, आज यहीं तक। हमारा पता नोट कर लीजिए, बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003। और ईमेल आप लिखना चाहें तो पता है hindi.letters@bbc.co.uk।
नमस्कार।
तो ये थे आपके पत्रों के उत्तर। अब दौड़ाते हैं खेल समाचारों पर एक नजर। राखी मेरे सामने हैं, बताइए राखी क्या समाचार है?
सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जो चल रहा है उसमें आज का दिन भी भारत के लिए थोड़ा निराशाजनक रहा। पुरुषों के इस टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद भारत की महिला एकल में भी चुनौती आज पीवी सिंधु की हार के साथ खत्म हो गई। सिंधु को दूसरे दौर में चीन के हे बिंग जियाओ से 21-11, 14-21, 14-21 से मात खानी पड़ी। उनसे पहले मेन्स डबल्स में भी भारत के प्रणव जेरी और अक्षय देवालकर भी दूसरे दौर में इंडोनेशिया की जोड़ी से हार कर बाहर हो गए। और वहीं बात की जाए IPL की तो राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम पर आज राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स बनाम गुजरात लायंस का मुकाबला खेला जाना है। मुकाबले में टॉस हो चुकी है जिसे पुणे की टीम ने जीत लिया है और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि बिना किसी बदलाव के पुणे की टीम उतरने वाली है। वहीं सुरेश रैना की कप्तानी वाली गुजरात लायंस ने इस मैच में 3 बदलाव किए हैं। दोनों ही टीमों की अगर बात की जाए तो टीमें संतुलित नजर आ रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा अंतर कप्तानों की सोच का हो सकता है क्योंकि दोनों ही कप्तान एक दूसरे के खिलाफ पिछले 8 सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलते नजर आए हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद राखी शर्मा। और मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दलित छात्र रोहित वेमुला की मां राधिका वेमुला और भाई राजा वेमुला ने आज बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती पर मुंबई में एक कार्यक्रम में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पनामा पेपर लीक्स के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। भारत प्रशासित कश्मीर में सुरक्षा बलों के साथ हिंसक संघर्ष में 4 आम लोगों की मौत के बाद तनाव को देखते हुए आज मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। बीबीसी समाचार।
और इससे पहले कि सभा समाप्त की जाए सुनते हैं वो आवाज जिसका आज जन्मदिन था। माफ कीजिएगा, ये आवाज हम आपको नहीं सुनवा पा रहे हैं। रेहान फजल को अनुमति दीजिए। नमस्कार।